संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 193 193 192 के नीचे का पैरा इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां प्रत्येक द्रव्य के अस्तित्व को ही द्रव्य का लक्षण माना गया है और उक्त अस्तित्व में गुण पर्याय तथा उत्पाद व द्रव्य भी समाहित हो जाते हैं, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि द्रव्य और उसके गुणों में जो उत्पादादि रूप परिणमन होता है, परिवर्तन होता है, वह अस्तित्व स्वभाव को छोड़े बिना नहीं होता। प्रत्येक वस्तु द्रव्य माने प्रत्येक वस्तु जो भी जगत में है वो तो ज्ञान नय का विषय छोड़ देना है यहां अभी, लेकिन जिसका अस्तित्व इस जगत में है वो सारे पदार्थ उनका अस्तित्व तभी माना जाता है कि जब उत्पाद वे द्रव्य से युक्त हों और गुण पर्याय वाले हों। लोक में अपन कहते हैं ना, भले ही वो मिनिस्टर है लेकिन उसका अस्तित्व क्या है। गृहमंत्री से पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी, क्यों नहीं हुआ, और पुलिस वाले तो ऐसा कहते हैं, पुलिस वाले तो ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा, भैया पुलिस वाले परमानेंट हैं और हम टेम्परेरी हैं, साल दो साल के क्या, यानी वो सबका ऑफिसर है, उसे अपने हिसाब से सारे देश को मतलब चलाना है, हैं? और वो इस रूप में अपने उन कर्मचारियों से अपनी तुलना करे क्या, तो फिर वो क्या काम कराएगा, वो क्या कह सकता है। उसमें मैं साल दो साल हूं, चाहे जितना इसको डांट दूं, परेशान कर लूं, कुछ नहीं बोलेगा अभी, हैं? और दो साल बाद फिर कोई भी जरा सा केस पड़ेगा तो अपन कोई गिरफ्तार करके जेल में डालेगा, हथकड़ी डाल के ले जाएगा बाजार में, हुँ? इनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व माने क्या, कि उसकी कहीं कुछ चले तो उसे अस्तित्व मानते हैं इस जगत में, और जहां जिसकी नहीं चलती है उसको अस्तित्व नहीं मानते हैं। वस्तु के स्वरूप में क्या है कि जिसकी अपने में पूरी चले और किसी और किसी की उसमें नहीं चले, और जिसकी पर में रंच मात्र न चले, ये तीन शर्तें पूरी करें तो उसको अस्तित्व कहते हैं। क्या, अपने में पूरी चले, अपने में दूसरे किसी की न चले और अपनी किसी दूसरे में ना चले, तीन बातें हो गई ना। ये अस्तित्व का स्वरूप ये है कि जब उसे हम अस्तित्व मानेंगे, सत्ता का स्वरूप कि हमारी सत्ता है, हम हैं, इतना मात्र यदि है तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय मैंने द्रव्य गुण पर्याय कहा तो उत्पाद में आ ही गया, गुण पर्याय वाला कहा ना और उत्पाद में ध्रुव वाला कहा, तो उन्होंने सत्य का लक्षण है। शायद आगे ऐसी गाथा आएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य, ये सत्य का विस्तार है ये कहेंगे। वास्तव में द्रव्य अथवा गुण और अलग अलग सत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग वो तो सत्य का अंश है, इसलिए सत्य कह रहे हैं उसे। क्या, माना अपने पर्याय की भी सत्ता है, लेकिन वो सत्ता माने जैसा अस्तित्व द्रव्य का है वैसी नहीं है। वो कहेंगे एक समय की है। अब एक समय की जो वो सत है अनंतानंत पर पदार्थ, उसके एक समय का जिस समय का उसका अस्तित्व है उसे रोक नहीं सकते। और एक सेकंड एक समय आगे पीछे वो रह नहीं सकती, और किसी में कुछ करे वो तो भाग की बात है, क्या उसका ही अस्तित्व नहीं रहने वाला है। तो अस्तित्व के लिए पर समय पर द्रव्य पर क्षेत्रकाल भाव की बात थोड़ी है, लेकिन वो जितने में है वो पूरी आजाद है, उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइजिंग नहीं है। गुरुदेव श्री एक ऐसा फरमाते थे कि राग को रोक दो, राग का अभाव कर दो, राग का नाश कर दो, ये तो कथन मात्र है, आज तक किसी ने राग का नाश कर नहीं पाया। भूतकाल का राग तो नष्ट हो गया, अब जो नष्ट हो गया उसका नाश क्या करें, भविष्य का अभी पैदा ही नहीं हुआ है ना, तो उसका क्या नाश करें। अब वर्तमान का राग है तो वर्तमान होता है एक समय का, तो एक समय में अब तुम किसको नाश करो, उसे दिखना चाहिए ना तुम्हें, वो एक समय में पैदा होगा फिर तो वो पैदा हो ही गया, अब उसका नाश कर देंगे हम, अगली समय में तो अपने आप ही नष्ट हो जाने वाला है, उसकी स्थिति ही इतनी है क्या कि उसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो काय को बोलते हैं, तो कहते भविष्य में रागादिक उत्पन्न नहीं हो उसका ही नाश कहते हैं। तो वास्तव में ये भी बहुत औपचारिक ही है कि भविष्य का अभी जो अभी कहा ना कि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका वो ना पैदा नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि वो स्वसमय में है जैसे समझना हम इन हम त्रिकाली ध्रुव में चले जाएंगे आत्मा का ध्यान करेंगे तो फिर वो राग पैदा ही नहीं होगा, वो तुम्हारे पैदा नहीं होगा, तुम्हारे भविष्य की पर्यायों में उसका अस्तित्व सुनिश्चित नहीं होगा, तभी तुम जो ये कह रहे हम ये कर देंगे ये कर देंगे, तभी तुम ये कर पाओगे। क्यों है तो ये बहुत अच्छी चीज है ना, राग को रोक देना, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में चले जाना और वो राग रुक जाएगा, है ना, बहुत अच्छी चीज, अनंत सुख का कारण है, मुक्ति का कारण है, इसके लिए हमारा ये सारा प्रयास है, हैं? तो हमको चाहिए नहीं मोक्ष, तो आज तक क्यों नहीं कर दिया, हमें तुम्हें रास्ता दिख रहा है ना, हैं? तो आज तक तुम्हारी उपाधि बुद्धि नहीं थी, क्या नहीं था कि हमको करना ही नहीं था, समझ रहे क्या कह रहा हूं, कि यदि इतना सरल है कि आप अपने आत्मा में चले जाओगे तो भविष्य में वो राग पैदा नहीं होगा, कौन जो पैदा होने वाला था, जो पैदा होने वाला है उसे तो अनंत सर्वज्ञ मिलके भी नहीं रोक सकते, क्या समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, मेरा दिमाग एक कदम आगे जाता है और लोगों को अड़बड़ पता लगता है, फिर इससे आप तो हमारा कुछ नहीं रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, कि तुम्हारे हाथ में कुछ रखना नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो रहता है वो तुम्हारे लिए बोझा है, उसका नाम दुख है, उसका नाम आकुलता है, क्योंकि वो ही रहने वाली है तुम्हारे हाथ में, नहीं मेरी जिम्मेवारी, जिम्मेवारी माने आकुलता है, भविष्य का तो नहीं हो गई सो हो गई गलती, अब भविष्य में तो ये राग में नहीं आने दूंगा। वस्तु का स्वरूप तो ये बोलता है कि भविष्य में जो राग आना ही नहीं है वो ही नहीं आएगा, जो मैं एक दफे और भी कहा मैंने कि वो कहते हैं ये तो इस राग का कर्ता आत्मा नहीं है, किसका, मैं अनंतानबंदी संबंधी राग का कर्ता समय दृष्टि आत्मा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, इस राग का क्या दम है, इसमें क्या दम है कैला जी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्योंकि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी संबंधी राग है ही नहीं, और जो नहीं है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? रागम में लिखा है, रागम में लिखा है, तो समझो तो उसका अर्थ है। फिर राग का, तो राग का कर्ता नहीं है ना, कि इस अपेक्षा लिखा है। तो अभी जो कितना, अभी ढेर सारा राग है, अनंतानुबंधी की अपेक्षा बहुत कम होगा, लेकिन अप्रत्याखानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का, संयुलन का इतना राग अभी है कि नहीं है, ये कम नहीं है। ये जो समय साल लिखा गया, ये समय जो उसी राग का कार्य है, तो उसी राग के काल में एक काम हुआ है और उसका निमित्त ये है ना? मेरे मतलब अभी इतना ढेर सारा जो चौथे गुण स्थान से चौदहवें तेरहवें गुण स्थान का अंतर है, वो अंतर सारा राग विद्यमान है ना, कि वो राग कि उस वो राग तो उसके विद्यमान है, इसलिए एक निश्चय न से वो उसका कर्ता आत्मा है। और उसका नाम क्या है? अशुद्ध निश्चय न है। अशुद्ध निश्चय न है इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वो अशुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो तो शुद्ध निश्चय न जैसा ही ज्ञान की पर्याय है। जैसा शुद्ध निश्चय न सम्यक पर्याय है ना, सम्यक वो भी सम्यक पर्याय है, तो अशुद्ध नाम क्यों दिया? अशुद्ध नाम तो सिर्फ उसका विषय अशुद्ध है, वो अशुद्ध को विषय बनाता है, इसलिए उसका नाम अशुद्ध हो गया है? कोई यदि अपने नाम नहीं ले सकते, समझो निम्न कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी को जो डील करे उसको सफाई कर्मचारी कहते हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट होगा ना सफाई कर्म, सफाई का, तो उसमें जितने जो सफाई करेंगे वे उसके कर्मचारी हैं, जो उन्हें डील करेंगे वे उसके कर्मचारी हैं कि नहीं? क्यों? आईएएस ऑफिसर हूं, वे सब मिलकर एक सफाई कर्मचारी हैं कि नहीं? क्या बात करते हैं, मैं सफाई कर्मचारी हूं। तुम्हारे दिमाग में ये घुस गया है कि जो सफाई करे वो सफाई कर्मचारी है, जो सफाई करा है वो सफाई कर्मचारी नहीं है, है? क्या मैंने उसी डिपार्टमेंट का है ना? तो ऐसे विचारे निश्चय अशुद्ध निश्चय नहीं को, तो ये रागादि भाव अशुद्ध हैं, इसलिए उसका नाम अशुद्ध पड़ा। इसलिए घबराओ मत, शुद्ध निश्चय नहीं से नहीं है, वो तो अशुद्ध निश्चय नहीं से है। ऐसा ऐसा हम करते हैं जैसे अशुद्ध निश्चय नहीं झूठा हो और शुद्ध निश्चय नहीं सही हो, हम दोनों को बराबर वजन नहीं देना चाहते हैं, है कि नहीं है? हमारे दिमाग में से जबकि वस्तुस्थिति क्या है, वो तो निश्चय नहीं का एक भेद है, क्योंकि वो अपनी पर्याय है। यदि उस अपनी पर्याय को करता हम अपन को नहीं कहेंगे, समझ गया ना? मान लो कि नहीं आपको नहीं है स्वीकार, नहीं कहेंगे, जो राग अपने में पैदा हो रहा है जो नहीं है उसकी तो बात जाने दो, तो उसका करता अपने को नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? अपन के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है जिसको भी हम कहेंगे, कर्म के उदय को या जो भी आप बता दो, जिसने गाली दी उसको जो भी कहना हो, तो वो उसके लिए पर है कि स्वा पर है, तो एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना पड़ेगा। तो घर में ऐसा है, बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट को घुसा दिया, समझ में? निकालनी थी बिल्ली, अंदर घुस गई थी तो ऊंट को घुस दिया, तो बिल्ली तो निकली चाहे नहीं निकली, लेकिन ऊंट तो घुस ही गया। ये होते हैं ना, अपने मकान अपन ने किराए से दे रखा है, अब आजकल तो इतने कड़क नियम हो गए हैं कि किराए से खाली हो जाता है। मैंने पहले मकान मालिक बहुत परेशान थे, एक दफे जिसने ले लिया वो खाली करता ही नहीं था, आधी पौधन कीमत में उसको ही बेचना पड़ता था वो अपना मकान, और जिस दिन वो किराए पर लगा दिया उस दिन से अपना अपना है ही नहीं, तो ये कुछ गुंडे लोग रहते थे, तो उन गुंडे लोगों से को पैसा दे दे के कहते हम खाली करा देंगे, और फिर वे खाली कराने के लिए उसे परेशान करते थे, और उसे कहते थे चुपचाप यहां से खाली करके चला जा, नहीं तो हम तेरे को रोजी ना परेशान करेंगे। ऐसे गुंडे लोग खाली कराते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि वे गुंडे लोग कहने लग गए कि ये हम इसको करते हैं ना परेशान, तो ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो पुलिस वालों को कुछ देना पड़ता है। आप समझे ना, तो ऐसा करो कि तुम इसे हमारे नाम पर किरायेनामा लिख दो। क्या अब गैर कानूनी है कि कानूनी है, ये हमने बदलेंगे बस, कि तुम जब तक तुम रहते हो, तुम्हारे तुम किरायेनामे पे हो, तुम हमें लिख के दे नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको क्या कहना, तुम तो हमें लिख के दे दो, फिर हम देख लेंगे। अगर मेरे पास में किराए से मुझे मिला है खरा खाली, नहीं तो नहीं कर। इस तरह से वो परेशान करते थे। जी अच्छा रास्ता निकला। फिर क्या करते थे कि बाद में उसी मकान में जम के रह जाते थे कि मुझे को भी तकलीफ है। सेठ जी तो आप उससे क्या किराया लेते थे, उसे 10 रुपया मेरे से ज्यादा ले लो। अब मेरे बाप ने किरायेनामा लिख के दे ही दिया है, 8 दिन पहले ही दिया है, सब 8 दिन में खाली करा, वो जम जाता था। तो वो जो पहले था वो तो साधारण आदमी था क्या, और ये गुंडा जम गया। अब इससे खाली कहना बहुत ही कठिन है। इसको उदाहरण दिया, कहते थे बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट को घुसा लिया। समझ रहे ना, तो यदि इसमें क्या करना कि तुम यदि खुद करता नहीं बनोगे तो तुम्हारा राग जो तुम में पैदा हो रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हें तकलीफ देता है, उस राग का कर्ता कोई दूसरा होगा, वो स्वीकार है तुम्हें। एक दिन दूसरे देव का कर्ता तो जयेंद्र हम मानते ही नहीं है, और दूसरे को तो हम कहां लाएंगे, किसको लाएंगे, कौन कर देगा, किसके जिम्मे, चेतन आदमी से कहेंगे तो वो तो नहीं मानेगा। आपकी हर बात माने कि तुम्हारे राग का कर्ता वो हो, वो तो नहीं मानेगा। तुम्हें गुस्सा लाना है तो सामने वाले से कह भैया तुम हमें 4 गालियां सुना, क्योंकि हम गालियां आए सुने बिना हमें गुस्सा आता नहीं है, तो तुम्हें गुस्सा लाना है और तुम 4 गालियां सुना, तो क्या मुझे नहीं सुनाना, मेरा तुम्हारे प्रति कोई ऐसा भाव ही नहीं है कि मैं तुम्हें गालियां सुनाऊं, तो चेतन तो कोई मानेगा नहीं। तो हमारे पास एक वही है। कौन वो करम नाम का आजीव पदार्थ है, तो जो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसके नाम हम कुछ भी मर दें, क्यों कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे बिल्कुल अचेतन पदार्थ है, उसे कुछ नहीं, तुम्हारे करने रहने से कुछ मतलब नहीं है। एक चोलामल जी की भाषा में कहें तो सहज भाव से निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है, और उनने तो यहां तक लिखा है कि इस निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इससे उसकी भिन्नता भाषित नहीं होती। हम कहें इसने नहीं किया ऐसा नहीं लगता, वो बराबर वो बार बार वही हमें दिखाई देता है। क्या कह रहे समझे ना, वो वही दिखाई देता है। और ये कर्म तो आज हमने किसी ने देखे नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमने देखे नहीं तो वे हैं नहीं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आए हैं और सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं तो हम ही ने देखे, क्योंकि हम सब चीजें कोई सर्वज्ञ अपने अपनी देखी थोड़ी मानते हैं, सर्वज्ञ की देखी भी मानते ना, सर्वज्ञ ने देखे हैं ये बात सही है, लेकिन अब वो किसका किस समय कहां उदय है एक एक बात हमें सर्वज्ञ तो बताएगा नहीं, उसने तो बता दिया इतने कर्म होते हैं ऐसे ऐसे हैं, समझेंगे ना, आचार्यों ने गोमर साल लिख दिया और हमने पढ़ लिया, खाली में ही ना। अब आचार्य एक एक मिनट तेरे में क्या हो रहा तेरे को कैसे पता लगे, तो उसे उल्टा कर्म पकड़ो, कैसा कि तुम्हें गुस्सा आया ना कि हाँ, तो समझ लेना क्रोध कर्म का उदय, क्या क्या होगा, क्रोध कर्म के उदय से गुस्सा आता है, और हमें क्रोध कर्म के उदय को नहीं जानते, क्रोध कर्म के उदय का तो हम अनुमान करते हैं, काहे से हमारे गुस्से से, हमारे क्रोध से, समझने क्या मालूम क्या कह रहा हूं मैं है? अब वो नहीं आए तो हम नहीं कर सकते क्रोध कर्म के उदय का अनुमान है ना। अब हमें उसी को नाश करना है, तो वो आए नहीं तो हमें पता ही नहीं चले, और आ जाए तो आ ही गया तो क्या करें तो क्रोध आ गया ना। अब हम तुम अनुमान करते रहो कि क्रोध कर्म के उदय से आया होगा, मान कर्म के उदय से नहीं आया होगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो तुलरमन जी ने क्या लिखा वहां, ये लिखा कि ठीक है वो कर्म के उपसमाधिक की तुम बात करते हो। तुलरमन जी की एक विशेषता है, हम लोग नहीं नहीं बिल्कुल होता ही नहीं है, तो कहते नहीं होता है, ठीक है कर्म है, कोई कर्म का उपशम से ही होता है, लेकिन कर्म का उपशम भी तो तुम इसी प्रकार का आत्मचिंतन करोगे उसी से होगा। क्यों कई दिन का करता नहीं, तुम क्या करना चाहते हो उसके लिए बताओ। कर्म के नाश के लिए किस बात की परमिशन चाहते हो? कर्म को डंडा मारो और पिटाई पिटाई करो, उसमें आग लगा दो, क्या करना चाहते हो? कर्म के नाश करने की विधि जनागम में ये बताई कि तुम अपने आत्मा को जानो। क्या हम ये कह रहे हैं कभी तुमको, तुम अब छोड़ो कर्म भ्रम को, अपने आत्मा को जानो। कि छोड़े कैसे, हमें उनका तो नाश करना है, तो उनके नाश करने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा और आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें छोड़े बिना आत्मा जानने में आएगा नहीं। क्या उन्हें छोड़े बिना आत्मा जानने में आएगा नहीं, तो वो तो हमारे लिए जिसे अपन बोलते हैं ना लाइबिलिटी हो गया, हमारे लिए सहयोगी नहीं हुआ, बल्कि हमारे माथे उसकी जिम्मेवारी हो गई। इसलिए कहते भाई कि हम रागा देख के कर्ता जिस अपेक्षा से कहा है वो आचार्यों ने कोई पागल नहीं थे, इसलिए क्योंकि यदि नहीं मानेंगे तो पर द्रव्य के माथे कर्तृत्व जाता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस महासत्य को पहले पक्का करो बिल्कुल, तब दूसरी बात करो कि रागा देख का कर्ता है कि नहीं। वो कहते हैं कौन होगा करोड़पति में, पक्की बात पक्की, बाउंड क्या बोलता है, लॉक कर दिया जाए, लॉक पहले इसे लॉक करो, काय को कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। वो ये लॉक कर दिया, अच्छा कर दिया कि चाबी कुएं में फेंक दो, समझ में आया ना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुमने लॉक कर दिया तो तुम्हारे पास चाबी रहेगी तो तुम फिर खोल लोगे। क्यों है? माने ये जो महासत्य है कौन सा, एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, हम कुछ भी कहें आगे लेकिन तुम इस महासत्य से डिगना मत। अब वो रागा देख का कर्ता कौन है बोलो, अब क्यों पर को तो कह नहीं सकते, तो फिर अकेला स्व ही बचा, सारी दुनिया को दो भागों में बांटो स्व और पर में, तो दो ही होते हैं, और पर कहते ही तुमने सारे पर की झुट्टी कर दी ना, तो अब अकेला आत्मा ही बचा, अब उसको ही कहना पड़ेगा, क्या उपाय बताओ। इसलिए उन्होंने नियम बना दिया, यह परिणमति स करता, यह परिणमति स करता, जो परिणमित होता है वो करता है। पाणिनि जी आ गए कि नहीं, एक शर्त और है, स्वतंत्रा कर्ता, उस कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। क्या मालिक ने आज्ञा दी और नौकर ने काम किया, समझ में ना, तो फिर मालिक करता है। आप गाथा समय साल में आती है ना, कौन क्या बोलते उसको, हाँ प्राकरणिक वाली गाथा दो चार दिन पहले प्रचलन में आई थी शायद, तो वो अब यहां एक दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं नौकर ने किया है तो मालिक की आज्ञा से किया तो भी नौकर को छुट्टी नहीं मिलेगी, मालिक ने आज्ञा दी थी तो मालिक को सजा मिलेगी अलग से, नौकर उससे छूटेगा नहीं, समझ में ना क्या कह रहा हूं मैं। नौकर से कहा इसकी गोली मार के हत्या कर दो और उसने कर दी तो फांसी पे तो नौकर ही चढ़ेगा, कैसा इस मालिक ने आज्ञा दी थी, तो उसे आज्ञा देने की अलग सजा मिलेगी जो भी नियम होगी भारतीय संविधान में, उकसाने की जो भी नाम देना हो क्या नहीं, लेकिन तुम बरी नहीं हो सकते। ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्यों अब टोडरमल जी क्या कहते हैं इसमें? कहते तुम मालिक ने आज्ञा दी तो तुम उस काम करने को राजी हुए ना, सब कैसे नहीं होता, मेरी नौकरी छूट जाती, तो नौकरी कटाने के लिए राजी हुए ना, फिर ऐसे दूसरा वाला कहता है कि मुझे इसने मारने के लिए 1,000 रुपया दिया, यदि मैं नहीं मारता तो 1,000 रुपया नहीं देता है, समझे ना? तो तू 1,000 रुपया लेके राजी हुआ कि नहीं? कहीं मेरे को सजा काएगी होते इनको तो, क्योंकि तू राजी हुआ, स्वतंत्र रूप से तूने मारी हमारा है, स्वतंत्र कर्ता पानी को जवाब दे रहा हूं मैं। यह परिणमति से कर्ता के साथ में स्वतंत्र कर्ता लगा हुआ है, वो प्राकरणवादी गाथा को बगल में रखो, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो खबर छे बड़ी खबर छे, वो गाथा का भी हमें पता है क्या कि उसका क्या अपेक्षा है, लेकिन ये अपेक्षा समझ में आई ना? हम क्या समझते हैं, ये तो पूरा माथा प्राकरणिक पे चला गया, अब हम तो बिल्कुल बरी हैं, हम चाहे जितने मारेंगे क्यों, तो ये जो सारे जितने सेना सैनिक हैं, सेनापति आज्ञा देता है, सेनापति को प्रधानमंत्री आज्ञा देता है, ख्याल में आए ना, प्रधानमंत्री को सारी लोकसभा करती है, अनुमोदन सारा देश करता है कि नहीं तो हटा दें, पाकिस्तान को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्यों वो बेचारा क्या, लेकिन आज तक कोई सिपाही बचा नहीं, सामने वाले ने पकड़ लिया तो खूब यातना दे दे के मारा, सामने गोली से मार दिया, उस सजा में से तो निकला है कि अदालत में, अरे कहां ही अदालत मदालत, कौन पूछता है तुम्हारे, वहां तो वो निरंतर उन गोलियों के बीच में से आया है, कितनी गोलियां खाते खाते हाथ पैर तोड़वा के आया है, वो कहां सब सजा से बचा है, दूसरा आज्ञा देगे तो करवा देगा, तो हम सजा अपराधी नहीं होंगे, इस धोखे में मत रहना। और स्वतंत्रता करता वो भी हो जाएगा कि तुमको किसी भी तरह से राजी किया ना, कि साहब मैंने 1 पैसा नहीं लिया, मैं कसम खा सकता हूं, तो फिर तुमने क्यों किया, उसने छाती पे बंदूक रख दी थी कि तू चलाता है कि नहीं, नहीं तो मैं तुझे उड़ा दूंगा, अब क्या करना बोलो साहब, तो ठीक है तूने लोभ से नहीं किया तो भय से किया, क्यों भय नो कसाय है, लोभ कसाय है, क्यों यही तो फर्क है, अपराध तो दोनों एक सही हुआ, चाहे लोभ से करे चाहे भय से करे, किलगियन लिखा है धर्म श्राप का जाल में, भयासा स्नेह लोभाश्रय प्रदेवागम लिंगिनाम प्रणाम विनियम चैवे न कुरियु शुद्ध दृष्टया। अन्ना जी बता रहे थे आपको कि भाई गीत मिथ्या तो छूट गया तो सम्मदर्शन हो गया, ऐसा मत समझ लेना है, बता रहे थे वो तो तुमने नई कमाई की थी इस मनुष्य भव में, देवों के कहां है, नारदियों के कहां है, त्रेंचों के भी ज्यादातर कहां है ना, मनुष्य भव में नई कमाई की थी, अब वो तुमने थोड़ी बहुत छोड़ी है, तो उससे क्या कमा लो, असली मिथ्या दर्शन जो अनादि का था वो तो अभी वहीं का वहीं जमा हुआ है, उसमें तुम काय की कृपा चाहते हो, सब इससे क्या नुकसान था, बने रहने देते, हम गणेश जी के चढ़ाए आते देख माला तो क्या फर्क पड़ता था, हमारी बहुत सारी समाज 99% ऐसी ही है, क्या होता इतने से में एक अरग चढ़ा दिया, किसको, वेंतर को, भूत प्रेत को, किसी को भी समझ लो आप, इतने से में क्या होता है भाई, समझ में नहीं आता, तुम तो हर बात पर अड़ जाते हो, है ना, समाज में ऐसी वृत्ति, हम तो इस मामले में बिल्कुल नहीं है, बहुत सब बिल्कुल खुले हैं, तो ये कहता है कि हम तो सबको मानते हैं, मन सब दिगंबरों को मानते हैं, तो वो अपने को खुले बताता। दूसरा उससे बड़ा खुला आता है, वो कहता हमसे तो अंबर दिगंबर हमें कोई भेदभाव नहीं है। फिर तीसरा उससे बड़ा खुला आता है, हमें हिंदू मुसलमान में भी कोई फर्क नहीं है। ये सब कितने उदार लोग हैं, पर ये कहते हैं कि यही सत्य मेरे दस मेरे तत्तम नानन चान था। ये सब सांप्रदायिक लोग हैं, सारा देश इन्हीं ने बर्बाद किया है। आज ऐसी व्यक्ति चल ऐसा चल रहा है समाज में है? तुमको क्या थोड़ी सी इतनी सी आरती ऐसी कर ली तो तुम्हारे बाप को क्या बिगड़ता है? मैंने कहा हम दीपक भाई से पूछेंगे। कि उसमें कितने दीप है। मैं तो विदेश में भी जाता हूं और वहां बहुत रिवाज है बोली लगकर और आरती करने का, रोजाना रोजाना बोली लगती है विदेशों में भी मंदिरों में। हम जहां प्रवचन करते हैं ना तो वहां पहले मंदिर में जाते हैं, फिर वहां बोली लगती है, फिर आरती होती है, फिर जाके प्रवचन में सब आते हैं। तो हम तो ज्यादातर तो बाहर घूमते रहते हैं और फिर कभी कभी जाके खड़े हो जाते हैं और लोग जिनके घर हम ठहरते हैं वो उनकी बहुत भक्ति हम में होती है तो जाकर के बोली ले लेते हैं, फिर कहते हैं हमने तो आपके लिए दी। आप आरती करने का अवसर आपको मिले है इसके लिए नहीं, हम तो करते नहीं आरती। क्यों क्यों इसमें क्या है? हमारे टोडरमल स्मारक भवन का नियम है हम नहीं करते, हमारे मंदिर में भी नहीं करते, टोडरमल स्मारक भवन में भी हम नहीं करते और हम कहीं नहीं करते। विशेषतः में लोग होते ना, क्योंकि हम तो दिगंबर मंदिर में भी नहीं करते, अपने मंदिर में भी नहीं करते। हम आरती ने उनसे ये कहो कि हम तुम्हें श्वेतांबर भगवान की नहीं करेंगे, दिगंबर भगवान ही करेंगे, तो हम और बड़े सांप्रदायिक हो जाएंगे। लेकिन हम करते ही नहीं ना। क्या संत जी कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं कहता हमसे। तो बोले हमारे प्रवचन में भी एक संख्या कम नहीं होती, सब सुनते हैं सबसे प्रेम से शांति से, पर वो जानते वे तो करते ही नहीं है। उसमें क्या है? जैसे हम कह देते हैं ना कभी हम तो ये रोटी में घी खाते ही नहीं है तो कोई बुरा नहीं मानता है, तो वो उसको क्यों मानेगा? घी जैसी चीज छोड़ी उसका बुरा नहीं माना। हम जो घी खाते नहीं है तो घी की आरती नहीं करते, तो इसमें क्या आश्चर्य है? काय को समझौता करना है? कि वो चांदी की सेल की फलाने की वो इससे ज्यादा अशुद्ध है, वो उससे ज्यादा शुद्ध है, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना है? बोलो वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है। जिन आगम का हम गहराई से अध्ययन करें और वो हमारे जीवन में थोड़ा सहज भाव से आवे, एक तो आता नहीं है बहुत मुश्किल है, और आवे तो इस वजह से हम उसको नहीं आने देते हैं। देखो कहां पढ़ रहे अपन, मुझे एक पंक्ति बताओ। टीका में ये तो हो वो मुझे याद ना याद है कि जैसे मैं चार कहने पट गया था। हाँ वो हाँ टीका में अस्तित्व के भेद स्वरूपास्तित्व सादृश्यत्व की चर्चा भी की और सामान्य विशेष गुण भी बताए। वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से यह भी समझाया गया कि अस्तित्व अर्थात गुण पर्याय और उत्पाद भेदभाव के साथ द्रव्य का स्वरूप भेद नहीं है, यद्यपि उनमें लक्ष्य लक्षण भेद है तथापि स्वरूप भेद नहीं है। अब स्वरूप और लक्षण, हम स्वरूप और लक्षण एक ही मानते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके सबकाचार वगैरह जो किताबें अपने यहां से तो कोई छपाई नहीं है, अपन ने जो हेडिंग वेडिंग वो पाठ्यक्रम की बनाते हैं ना, कहीं भी स्वरूप लिख देते हैं कहीं भी लक्षण लिख देते हैं। लक्षण में तो मैंने कहा कि ऐसी बेकार की चीजें भी होती हैं, बकरी के गले में लटकने वाले वे दो स्तन होते हैं ना जिनमें कभी दूध नहीं निकला, वो बिल्कुल बेकार काम है, किसी काम के नहीं है। ये डॉक्टर लोग बताएं उनमें क्या क्या होता है, नहीं तो बेचारी बकरी को तो जाकर के वो घास चरती है ना, तो कांटे और उलझ जाते हैं, कांटों में भी उलझ जाते हैं तो तकलीफ और होती है। लेकिन बकरी की परिभाषा, वे गले के स्तन बनते हैं जिनमें कुछ दूध वूध नहीं आता, जिनमें दूध आता है वे नहीं बनते। लक्षण के लिए तो ये शर्त है कि जो पृथकत्व स्थापित कर दे, अन्य पदार्थ है ना, उसमें क्या शब्द है सर, मृतकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, मृतकीर्ण वस्तुओं में, मिली हुई वस्तुओं में जो व्यावृत्ति कर दे, उन्हें अलग अलग कर दे, वो लक्षण है। और स्वरूप तो उसके अंदर विद्यमान है, जो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, ये स्वरूप है, गुण पर्याय वाला ये स्वरूप है, और भाग्य से लक्षण भी है। देखो ये जीव का भी स्वरूप है, पर जीव का लक्षण नहीं है। द्रव्य का स्वरूप है और द्रव्य का लक्षण है। तो यदि वो दोनों एक ही चीज होती तो जिस जिसका वो लक्षण है उसे उसका स्वरूप भी होना चाहिए था, है ना। आत्मा का लक्षण उपयोग है, समझे ना, उपयोग को हमने लक्षण माना, सत को लक्षण। आत्मा द्रव्य है, इसलिए द्रव्य का लक्षण भी उसमें है, और आत्मा जीव है, इसलिए उसमें जीव का भी लक्षण मिलेगा। और आत्मा कल सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि का लक्षण भी उसमें मिलेगा। मतलब लक्षण पहचान के चिन्ह हैं, तो जहां जहां जाएंगे वो अनात्मभूत भी हो सकते हैं। पंडित हुकुमचंद को पहचानना हो तो वो टोपी वाला, क्योंकि दूसरा कोई टोपी लगाए नहीं है, तो इसलिए पहचान का चिन्ह बन सकता है। मैंने सारी जिंदगी इतना पढ़ा लिखा जिसकी वजह से मैं पंडित बना, उसमें कोई चीज काम नहीं आई तो मेरी टोपी जब जब टोपी की बात आती है तो मुझे अपने गुरुजी याद आते हैं। वे गुरुजी दादा नन्नालाल जी की बात करता हूं, 25वीं दफे मेरे से कहते थे कि बेटा इन नोक वाली टोपी काम नहीं आएगी, अध्ययन करना पड़ेगा तब प्रवचन ढंग से कर सकते हो। जे कर दे तो क्या होता था, हमारा प्रवचन उस वक्त भी अच्छा होता था, तो कभी कभी गुरुजी से आकर के लोग ये कह देते थे गुरुजी आपसे भी अच्छा, तो जरा दिक्कत हो जाती थी क्या दिक्कत हो जाती थी। तो गुरुजी हमेशा समझाते थे, कहते थे खासकर ये टोपी मोपी नोक नोक वाली कहां से आएगी, उस वक्त तो हमारे पास लोहा भी नहीं था, धोबी से करवाने का तो सवाल ही नहीं था, लोहा भी नहीं था, लोटा में थोड़े केवले डाले, लोटा समझ तो गोल गोल लोटा होता है ना और अपने हाथ से धोके और टोपी पे लोहा कर लिया, उसमें जो भी जितनी भी नौक होती होगी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी को बहुत सालती थी वे पगड़ी बांधते थे, गुरुजी पगड़ी बांधते थे, हम टोपी लगाते थे, तो वो कहते थे मतलब पूरी तैयारी के साथ तुमको करना पड़ेगा, इस तरह तुम समझते हो हम बढ़िया टोपी लगा लगू के नौकदार और पंडित बन गए तो उसमें मैं मत रहना, माने देश से ही काम नहीं चलेगा, इसका मतलब देश की छुट्टी नहीं है, देश में तो उसमें रहना ही पड़ेगा, समझ नहीं ना, टोपी तो लगानी पड़ेगी। हमारे अशोकनगर में तो ऐसा हुआ था कि सब श्रोता भी टोपी लगाए, अब ये कितना कठिन है बोलो, इन्हें चला सकते हैं, बहुत कठिन हो गया काम। तो हमने 100 टोपियां सिलाई अशोकनगर में, और 100 टोपियां सिलाकर ऐसे लगा दी मंदिर में, ऐसी कीलें ठोक ठोक के उन पर लगा दी कि जो लगा के नहीं आए तो यहां से उठा के लगा, लेकिन प्रवचन में बैठो तो टोपी लगा के बैठो, नंगे से बैठते हैं, मर्यादा नहीं है, ये शास्त्र का अपमान है। मैंने फुल ड्रेस में, राजा के यहां जाते हो तो आप फुल ड्रेस में जाते हो, ऐसा विधान देते थे। हिंद भगवान के सामने आप कहे जा सकते हो, भगवान दर्शन करने जाओ तो टोली लगा के जाना पड़ता था। अब मैंने देखा कि जो हमने मंदिर में जगाने के लिए लगाई थी सास सवा में बैठने के लिए, अब वो मंदिर में टोपियां तो यहां भी रखी रहती हैं। तुमने देखी कभी क्या काम आती हैं? जब किसी के यहां कोई मर जाता है और वो बैठते हैं कि हम घर वाले हैं, इसके प्रमाण स्वरूप वो टोपी लगानी पड़ती है। हम भदंडे पे फंस जाते हैं, हम जाते हैं टोपी लगा के तो लोग समझते हैं कि हमारे यहां कोई मर गया है। हमको आगे तो लोग बैठा नहीं लेते हैं, पीछे तो बैठने नहीं देते हैं, समझ गया ना? और फिर टोपी लगी हो ये टोपी बहुत काम आती है, समझे ना? जगह जगह जहां जहां तो सब जगह लोग पूछते हैं कि आप कौन सी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आप रेल में कहीं प्लेन में आप समझे ना? तो वो बहुत काम है, विदेशों में नहीं लगाता हूं मैं, एक टोपी रखता हूं, कभी बहुत इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो लगाने को नहीं, लगाता नहीं हूं, क्योंकि वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है। हरेक आदमी के लिए अपन कौतूहल बन जाते हैं, हरेक आदमी आकर के देखता है जैसे कोई उसका चिड़ियाघर का कोई नया जानवर आया हो। धोती कुर्ता तो यही पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं, लेकिन टोपी नहीं लगाते, ख्याल नहीं ना? अस्तित्व की बात चल रही थी ना, टीका में अस्तित्व स्वरूपास्तित्व सादृश्य अस्तित्व की चर्चा की है, मुझे बताया वस्त्र की। जो लोग स्वरूप और लक्षण को एक ही मान लेते हैं, यही बात चल रही थी ना, उन्हें आचार्य अमृतचंद्र के इस कथन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि लक्षण भेद तो है पर स्वरूप भेद नहीं है। किन में उत्पाद व्यय और द्रव्य में परस्पर, द्रव्य गुण और पर्याय में परस्पर, स्वरूप भेद नहीं है, लक्षण भेद है। पांचों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, उत्पाद की अलग होगी, व्यय की अलग होगी, द्रव्य की अलग होगी, गुण की अलग होगी, पर्याय की अलग होगी। एक मैंने अपने दृष्टि के विषय नामक किताब है ना, उसमें एक पर्याय की नई परिभाषा दी है, और जिसके आधार पर वो सारा समस्या हल करते हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। क्या दी है मालूम? बस खत्म। एक में पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहती है। तो गुणभेद काय में आएगा, द्रव्य में के गुण में के पर्याय में, क्योंकि वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, समझ रहे ना? इसलिए गुणभेद अब अगर पर्याय से भिन्न है, गुणभेद से भिन्न है। अरे भाई पर्याय से भिन्न कहने में गुणभेद आ ही गया, फिर अलग से क्यों कहा? तो कहते हैं विशेष ज्ञान कराने के लिए, जिनको लोगों को ये मालूम नहीं है कि गुणभेद को भी पर्याय कहते हैं, उनको ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा गया है। क्षत्रिय आयाता सूर्यवर्मापि, इसके हिसाब से अस्तित्व सभी का एक है, अतः स्वरूप भेद नहीं है, पर सभी के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, इसलिए लक्षण भेद है। उक्त सभी के लक्षण टीका में दिए गए हैं, अतः यहां विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। महासत्ता सादृश्य अस्तित्व का ही दूसरा नाम है, और अवान्तर सत्ता स्वरूपास्तित्व का ही दूसरा नाम है। अपने स्वभाव को छोड़े बिना इस पद का अर्थ है वस्तु स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना सादृश अस्तित्व में सम्मिलित है। क्या अर्थ इसका? हमको ऐसा लगता है कि जब हम महासत्ता की अपेक्षा मान सादृश अस्तित्व की अपेक्षा सब एक हैं, हमारा तो खत्म ही होगी। हमारी तो समुद्र है, और समुद्र में हमारा एक बूंद पानी हमने रखा था और सारे समुद्र में डाल दिया, तो खत्म। तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, अब वो तो समुद्र हो गया। तो हम महासत्ता में जाके शामिल होंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हम महासत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो लोग, क्योंकि अब तक तो हमने खूब डट डट के अभ्यास किया है कि परद्रव्य का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है और वज्र की दीवार खड़ी है, बस टूटती नजर आती है कि सारी एक अपेक्षा तो है ऐसी कि जिस अपेक्षा हम सब एक हैं, और वो है महासत्ता। तो वो कहते हैं वो शर्त ही है कि अपने अस्तित्व को छोड़े बिना हम महा अस्तित्व में शामिल हैं, समझ गए ना। अपना अस्तित्व कौन, क्या अपना अस्तित्व माने, स्वरूप अस्तित्व। हमारा जो स्वरूप है, स्व माने अपना रूप है, उसको छोड़े बिना हम उसमें शामिल होते हैं। देखो मुझे एक जैनियों का संगठन बनाए बहुत बढ़िया कि सब जैनी एक हो जाए हैं? अब वो कह रहे एक कैसे हो सकते हैं। अपने धर्म सागर जी महाराज थे तो वो उस वक्त जब ये महासंभ बना था ना, क्या नाम 2500वां निर्माण वर्ष, तो कहे पूरा जैन समाज एक हो जाए, ये इसका आंदोलन चला था। वो बहुत सीधे सज्जन और कम पढ़े लिखे और बहुत चारित्र में अपेक्षाकृत काफी कड़क आदमी थे। मैंने उनका संपर्क में रहा हूं। मैं यहां जयपुर आने के पहले अशोकनगर में था, वहां विदिशा में था, तो वहां महाराज के तहत चौमासा हुआ था, क्या हुआ था, तो मैं संपर्क में रहा था, मैं जानता था उन्हें। वैसे तो नैनवा के थे, जन्मदान नैनवा का है। उनके पास ये लोग गए तो उनने बहुत सहजता से कहा, कोई सितंबरों का प्रतिनिधि गया होगा कि देखो भैया, तुम कपड़ा छोड़ने वाले नहीं हो और हम कपड़ा पहनने वाले नहीं है, इसलिए एकता मित्रता की बात मैं बंद करूं, अभी क्या करना है वो बोलो। उत्सव एक साथ मनाना है तो हम कब मना करते, मनाओ। महावीर जयंती एक साथ मनाना है तो मनाओ, संलेखना का जुलूस एक साथ निकालना है तो निकालो, लेकिन हम सब एक हो जाएंगे ये बातें छोड़ो। वो बात लोगों को बहुत अपील की सब जगह। ऐसे ही जब ये बना था समन सूत्रम, तो स्वामी जी के पास एक बजाज हैं, वो गए थे बनारस में रहते हैं, क्या नाम है उनका पूरा, बजाज, लेकिन विनोबा जी की तरफ से गए थे, फिर मेरे पास भी आए थे। तो स्वामी जी से उनने दिखाई किताब, पहले भेज दी थी, फिर वहां पूछा कि साहब आपकी कोई सलाह हो, आपकी कोई सलाह हो, क्योंकि सब बड़े लोगों की सलाह से बनाना चाहते थे जिसमें सबका सहयोग मिले। तो उनने कहा कि तुमने इसमें जो गाथाएं सब मिला दी हैं, बोले हमने आधी आधी रखी हैं, आधी दिगंबरों की आधी सितंबरों की, 700 गाथाएं हैं तो 350 इनकी 350 उनकी, बिल्कुल बराबर रखी हैं, एक भी कम ज्यादा नहीं है। तो उनने कहा कि आप जैसे दो वो अधिकार बनाओ, मतलब एक खंड दो दो खंड बनाओ, एक श्वेतांबर खंड एक दिगंबर खंड, और उसमें जो 350 गाथाएं हैं दिगंबरों की हैं वो एक में रखो और दूसरे खंड में रखो, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो उनने क्या कहा बजाज साहब ने कि साहब ये तोड़ने का काम तो आप संत ही लोग बहुत करते हैं, हमने तो ये काम जोड़ने के लिए किया है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आया ना कितनी बड़ी बात है। राम जी भाई बैठे, सब खेमचंद भाई बैठे, सब लोग बैठे, और उनने उनसे ये बात कही। गुरुदेव बोले कितना जैन धर्म तुमने कितना पढ़ा है, नहीं नहीं मेरे विनोबा जी ने काम सौंपा, तब से हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हम तो आचार्यों के पास जाते हैं उनसे ले लेते हैं गाथाएं इसमें लगा देते हैं, तुमने तो नहीं किया ना कुछ, कहना नहीं हमने क्या हम कर जाना है, बर्णी जी को सौंपा, बर्णी जी कौन, जिनेन्द्र बर्णी। तो उनने कहा हमने सारी जिंदगी लगाई है इसमें, लाखवें श्लोक सीतांबरों के पढ़े हैं और दिगंबरों के पढ़े हैं, और उसके बाद हम कह रहे तो हम तोड़ने वाले हो गए, और तुमने एक गाथा नहीं पढ़ी और तुम जैन धर्म को जोड़ने वाले हो गए। ये गुरुदेव का ये जवाब था, समझ नहीं आती है। लेकिन गुरुदेव तो बहुत शांत नेचर के हैं, उससे उन्होंने उनको भगाया नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो फिर उनने ये कहा गुरुदेव ने कि तुम जयपुर जाओ, हमारे विद्वान हैं वहां डॉक्टर हुमचंद भारेल, तो मेरा नाम लेना और उनसे कहना ये काम आपका वो करेंगे, हमारे यहां कोई नहीं करेगा। तो फिर वो सोनगढ़ से मेरे पास सीधे ही आए, राधा कृष्ण बजाज उनका नाम है पूरा, क्या नाम है, राधा कृष्ण बजाज, बनारस में रहते हैं। उनने एक किस्सा मुझे सुनाया, राधा कृष्ण बजाज ने, कि ऐसा ऐसा हुआ और स्वामी जी ने मेरे आपके पास भेजा है। मैंने 100 गाथाएं दी उसमें, जिसकी 75-76 गाथाएं मेरी उसमें रखी गई। इसमें ये सब जो गाथाएं हैं ना अहिंसा वगैरह की, ये प्राकृत में गाथा भी है, संस्कृत का श्लोक है ना, ऐसी धवल में गाथा भी है, तो ये सब मैंने दी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री थे, प्रधानमंत्री नहीं जैन समाज में थे, जो स्वामी जी के कट्टर विरोधी थे, और हमारी उनकी टक्कर कई दफे हुई। वे भी मुरैना विद्यालय के विद्यार्थी थे, हम भी मुरैना के विद्यार्थी थे। तो उनने कहा कि मैंने बहुत सोचा कि ये गाथाएं कहां से आई हैं, इसमें ये गाथाएं तो थी नहीं, पहले छपा था जैन दर्शन सार के नाम से, ये तो थी नहीं, अब ये श्रवण सत्तम के नाम से छपा था, इसमें ये गाथाएं हैं, ये कहां से आई हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसमें जो प्रकाश की छपा था ना, तो उसमें लिखा था ये कि स्वामी जी के अनुयायी डॉक्टर हुकुमचंद भाल ने उनके कहने से हमें 100 गाथाएं दी थी, उनमें से करीब इतनी गाथाएं हमने इसमें रखी। अब हमारी समझ में आया कि ये गाथाएं कहां से आई। मेरा मतलब ये है कि ऐसी एकता की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वो धर्म के अनुकूल नहीं है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है। यदि हमें सच्चा जैन बनना है, हमें आत्मा का कल्याण करना है, तो हम सबके साथ में खड़े हैं, सबके साथ कोई भी जुलूस में तैयार हैं, महावीर जयंती को तैयार हैं, सब करने को, लेकिन हमारा जो वस्तु का स्वरूप कौन सा है, अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना उसमें हम शामिल होने को तैयार हैं। हम अपना व्यक्तित्व छोड़े बिना, हम अपना मिशन छोड़े बिना, हम अपनी त्रिकाली दुर् भगवान आत्मा का जो हमारा मिशन है उसे छोड़े बिना सब में शामिल होने को तैयार हैं। छोड़ने की कीमत में किसी के भी शामिल होने को हम तैयार नहीं है। ख्याल में है ना आपकी बात में, ये लिखा लिखा ना, क्या लिखा, उनके अपने स्वभाव को छोड़े बिना। इस पद का अर्थ है कि वस्तु स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना सादृश अस्तित्व में सम्मिलित है। देखो हम जैन भी हैं और दिगंबर भी, क्योंकि हम दिगंबर जैन हैं। क्या है देखा ना, ये बात जो मैंने आपको समझाई है वो तो कितनी सशक्त भाषा में लिखी है। हम दिगंबर भी हैं और हम जैन भी हैं, और क्योंकि हम दिगंबर जैन हैं, दिगंबर जैन और जैन इन दोनों में एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार हम दिगंबरत्व को छोड़े बिना जैनत्व में शामिल हैं, उसी प्रकार स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना हम सादृश्य अस्तित्व में शामिल हैं। समझ में आ गया ना, इस प्रकार हम अवांतर सत्ता और महासत्ता दोनों से समृद्ध हैं। हम जैनी भी हैं और हम दिगंबर भी हैं, समझ लो मोक्ष भी हैं। तो वो कहता हम जैनी, कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है कि हम जैनी भी हैं, ऐसे हम दिगंबर सितंबरों के साथ एकता स्थापित करके एक साथ एक स्टेज पर बैठेंगे, क्यों, तो फिर हमें छूत लग जाएगी। नहीं नहीं, इसलिए एक साथ बैठना ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। और वो एक जगह नहीं है, दिगंबरों में भी श्वेतांबरों में भी, श्वेतांबर के भी बहुत लोग कहते हैं हमें नहीं बैठना दिगंबरों के साथ, दिगंबरों में भी कहते हैं नहीं कहना, फिर अंदर अंदर जो भेद हैं तेरापंथी बीसपंथी उनमें भी कहते हैं, फिर मुमुक्षुओं में भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमको जाना ही नहीं, क्यों क्यों नहीं जाना, हमारी बात में कोई कमजोरी है, हमारे पास जो तत्व ज्ञान है, जो हम जैन धर्म की बात मानते हैं बहुत मजबूती है, जितनी मजबूती हमारी इसमें है तत्व ज्ञान में वो किसी के पास नहीं है, और हम अपनी भूमिका के अनुसार जो सदाचार हमारे जीवन में है वो भी किसी के में नहीं मिलती है। ये सैकड़ों पंडित हम जैसे आपको मिलेंगे, ये बाजार में चाट खाते, आलू जमी कंद खाते सब मिलेंगे, देख लेना, रात्रि में भोजन करते, मैं बताना नहीं चाहता हूं ज्यादा, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में उदयपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था जिसमें 75 पंडित आए थे, कितने 75, और मोक्षुओं को भी सहयोग मिलना चाहिए इसका मेरे पास उन्होंने अनुरोध किया था यूनिवर्सिटी वालों ने, तो मैंने मोक्ष मंडल से वालों से कहा था, तो उन्होंने कहा एक टाइम का भोजन हम देंगे, मैंने 6 टाइम के भोजन बट गए, तो एक टाइम का मोक्ष मंडल ने लिया, तो शाम का मिला, शाम का मिला तो वो 75 में शाम का मिला, तो शाम को भोजन तैयार कर लिया हमने, 75 विद्वानों में से 72 विद्वान दिन में खाने को तैयार नहीं थे, बोल रहा हूं मैं गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूं, इसमें जा रहा है टीवी में, जाएगा टीवी पे, 3 विद्वान थे जो कहते थे हम दिन में खाएंगे, जिनमें एक मैं, एक कस्तूचंद जी कासलीवाल अब डॉक्टर यहां थे ना, और एक शायद डॉक्टर देवेंद्र कुमार, कोई ऐसे 3 लोग थे जिनने दिन में खाया, बाकी ने सब रात में खाया, बोलो क्या करें, माने एक दिन भी दिन में नहीं खा सकते क्यों, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, अरे भाई घर में खाओ रोजीना तो खाओ, लेकिन एक दिन दिन में खा लो, ठीक है ना कैलाश जी, और देखना है किसी भी शादी में चले जाना, उस कार्ड में लिखा रहता है दिन में भोजन की भी व्यवस्था है, मैंने कहा कोई ऐसा रात्रि भोजन वाला आया तो लिखो कि रात्रि में भी भोजन की व्यवस्था है, बाकी सबका तो दिन में रखो, तो दिन में भी व्यवस्था है ऐसा, और जब दिन की व्यवस्था में जाते हैं कभी, अब तो हमारा बंदा ही है बिल्कुल कहीं जाते ही नहीं, तो उसमें 2-4 आदमी मुश्किल से मिलते हैं, वो हमारी उम्र के ही होते हैं, क्यों समझ नहीं ना, ये हालत है हमारी सब जैनियों की, तो हमको काय का डर है, यानी मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों विद्वानों को, बिल्कुल चौड़ी छाती रख करके, छाती ठोक के खड़े रहना कि सबके साथ के, हां चलो सबके साथ चले, डरे वे जिनमें कोई कमजोरी हो, क्यों तत्व ज्ञान में भी हमारी कमजोरी नहीं है, हमारे आचरण में भी हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी श्रद्धा में भी कोई हमारी कमजोरी नहीं है, हम पक्के जैन दिगंबर जैन हैं, किसी से भी 1% भी उन्हीं से नहीं है, तो फिर हम क्यों डरें कि हम यहां नहीं जाते वहां नहीं जाते, जाना नहीं पाए अलग है, नहीं अपनी स्वास्थ्य नहीं हो और कारण हो नहीं जा पाए नहीं जाए, हमें प्रॉपर सम्मान के साथ नहीं बुलाया जाए तो हम नहीं जाए, लेकिन हमें अपनी अवांतर सत्ता को कायम रखने के लिए महासत्ता में शामिल होने से इंकार करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा हूं मैं, उसका ये प्रैक्टिकल रूप है, समझ गए ना, देखो इस प्रकार अवांतर सत्ता और महासत्ता दोनों से समृद्ध हैं, है ना, क्योंकि हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं, इसमें ज्ञानानंद स्वभाव हमारी अवांतर सत्ता है और हैं ये हमारी महासत्ता है, क्या समझ में आया क्या नहीं, क्या समझ में आया बोलो, क्या नाम नाम है तुम्हारा है? क्या ना गुणवंत होगा, क्या नाम से क्या दे रखा है, तुम तो बताओ, बात बताओ।
हमारी सत्ता है,
यही बताया हमने, यही लिखा है इसमें। इसलिए हमने समझा ना कि तुम सुन ही नहीं रहे ध्यान से, तो समझोगे क्या। बोलो, तुम बताओ। चलो, इसमें मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं लिखा ना, तो ज्ञानानंद स्वभाव ये हमारा स्वरूपास्तित्व है, और हूं ये सादृश अस्तित्व है। अकेला हूं शब्द को पकड़ो, क्योंकि हूं कहो मैं हूं, ये अस्तित्व को बताता है, समझेंगे ना, सादृश अस्तित्व को ब्रह्मानंद। यानी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो मैं कौन हूं, तो मैं ज्ञानानंद स्वभाव वाला हूं, ये तो मेरा स्वरूपास्तित्व है, और मैं हूं, नहीं हूं ऐसा नहीं है, ये मेरी महासत्ता है। समझ में आया, ध्यान नहीं जाता है, ध्यान दिलाने के लिए ऐसा किया और कुछ नहीं। लिखा ना, इसमें ज्ञानानंद स्वभावी हमारी अवांतर सत्ता है, और है अर्थात अस्तित्व हमारी महासत्ता है। आज लिखा ना इसमें क्लियर, न तुम देख भी नहीं रहे थे इसे। ये पूछने का काम अन्ना जी वगैरह करते हैं, मैं करता नहीं हूं, ये तो कभी कभी हो गया। हम चेतन होकर भी उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त, सुनना, और गुण पर्याय से युक्त द्रव्य हैं। हम द्रव्य भी हैं, समझे, गुण पर्याय से और चेतन से युक्त, और उत्पाद व द्रव्य से युक्त और गुण पर्यायों से लक्षित हमारी महासत्ता है, और ज्ञानानंद स्वभावी चेतन तत्व से लक्षित होना हमारी अवांतर सत्ता है। महासत्ता से हम सबसे जुड़े हैं, और अवांतर सत्ता की वजह से हमारा अस्तित्व पूर्णता स्वतंत्र है। इस प्रकार हमने स्वरूपास्तित्व को छोड़ा नहीं है, और हम सादृश अस्तित्व में शामिल हैं। हम ऐसी महासत्ता के अंश हैं जिसमें स्वरूपास्तित्व को छोड़ना जरूरी नहीं है। मैं अपने स्वरूपास्तित्व में भी शामिल हूं, और सादृश अस्तित्व में भी शामिल हूं। इस प्रकार सभी जीव द्रव्य सादृश अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व से युक्त हैं। सभी का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हैं हो, और मैं भी अनंत गुण वाला हूं। पुद्गल भी अनंत गुण वाला है। आप भी गुण पर्याय से युक्त हो, मैं भी गुण पर्याय से युक्त हूं। महासत्ता की अपेक्षा हम तुम सभी एक हैं, एक से हैं। अतः इस अस्तित्व का नाम क्यों है सादृश अस्तित्व? एक से हैं, एक एक हैं, ये तो उपचार है। एक से के अर्थ में एक मतलब है। यहां की बात एक मिनट में कह के खत्म करूंगा। जब मैं यहां आया था, तो मेरे से आकाशवाणी का फोन आया क्या कि भगवान महावीर जयंती पर आपको भाषण देना है। वो उनमें कोई थे मुकुल करके थे, जो उसके डायरेक्टर थे। तो वे आपको ये बोलना है कि हम सब एक हैं। महावीर भगवान ने ये कहा कि हम सब एक हैं, फोन पे ही उनने मेरे को, है ना। तो मैंने कहा महावीर ने ऐसा कहा था? ऐसा पूछा मैंने। बोले हम क्या जाने, आप पंडित लोग जाने। आप मेरे को कह रहे हैं ना कि मैं ऐसा बोलूं, जब आप मुझे बता रहे हैं ना कि मैं बोलूं कि भगवान महावीर ने कहा हम सब एक हैं। तो मैंने कहा, बोले मैं नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से बात कर रहा हूं। देश में राष्ट्रीय एकता हो, इस बात का पोषक हो आपका व्याख्यान, मैं ये कहना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भगवान महावीर के सिद्धांतों में ऐसी बहुत बातें हैं जो हमारी देश के प्रति एकता को बल देती हैं। मैं वो कहूंगा, आप चिंता मत करो, मैं वो बात करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब एक हैं। क्योंकि हम हैं नहीं। तो फिर मैंने बोला पहला वाक्य क्या था मालूम मेरे यहां कि भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि हम सब एक हैं, ये कहा कि हम सब एक से हैं, क्योंकि यदि हम एक हैं तो फिर एकता की जरूरत ही क्या है। एकता की जरूरत तो अनेकों में होती है, एक में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है, संगठन की क्या जरूरत है। इसलिए हम बिल्कुल जुदे जुदे हैं लेकिन एक से हैं। एकता का आधार एकता नहीं समानता है। अब फिर मैंने समानता के बारे में बताया कि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। हमने एक दूसरे को छोटा बड़ा माना, इस वजह से सब चक्कर हुआ। यदि हम सभी एक हैं, यदि कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता होता तो हमारे को ये विकल्प भी खड़ा नहीं होता। मैं पूरा भाषण, वो चार भाषण हुए थे मेरा फिर आकाशवाणी पर, इस चारों भाषण का मिला हुआ एक रूप है, किताब है, उसका नाम है तीर्थंकर भगवान महावीर, जो 16 पेज की एक किताब है ना, तुमने पढ़ी है? उसमें मेरे चार रेडियो भाषण हैं जो मैंने दिए थे, उनका वो संपादित रूप है।